ओम शांति। हम सब एक हाथ की ताली से आदरणीय सुमन दीदी जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय सुमन दीदी जी को बचपन से ही अलौकिक परिवार के साथ बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ और 1992 में जैसे ही आपने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री बेंगलोर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, उसके तुरंत बाद आप बाबा के बेदगर मधुबन में समर्पित हो गए और तब से आप कॉन्फ्रेंस ऑफिस में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप वर्तमान में एजुकेशन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और ज्ञान सौर की सेवाओं को भी सुचारू रूप से चलाने में अपना अहम योगदान देते रहते हैं। और अभी का जो हमारा सेशन है प्रश्नोत्तर का, तो उसके ही अभी हम आदरणीय दीदी जी से प्रश्न पूछेंगे। ओम शांति। दीदी, पहला प्रश्न है, लौकिक कार्य करते समय व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कैसे हो? लौकिक कार्य करते समय व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उन व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कैसे हो?
ओम शांति। तीन दिन के भट्टी के बाद सब प्रश्न का सलूशन मिल गया या अभी तक प्रश्न है? बाबा कहते हैं प्रश्नों से ऊपर उठना है, फुल स्टॉप लगाना है, लेकिन जब तक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तब तक फुल स्टॉप भी नहीं लगेगा ना। तो ये प्रश्न था कि व्यर्थ चिंतन कैसे हम मुक्त, व्यर्थ चिंतन से कैसे मुक्त हो। बार बार मन के प्रति हमारा अटेंशन, बार बार हमारा जाने की जरूरत है। अगर मन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, तो इधर उधर भाग जाता है। व्यर्थ चिंतन इसलिए भी चलता है क्योंकि आधा कल्प से हमने उसको लगाम ही नहीं लगाया, जिधर जाए उसको फ्री छोड़ दिया है। इतने लंबे काल से उसको फ्रीडम दिया है, इतने आधा कल्प 2500 साल के बाद हम उसको लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जल्दी नहीं लगता है। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों को आप बहुत फ्रीडम दे दिया है, बचपन से बहुत फ्रीडम दे दिया, लेकिन बड़े होने के बाद 18 साल 19 साल के बाद फिर लगता है कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो चलो थोड़ा लगाम लगा दे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए तब लगेगा लगाम। हाँ, बचपन से ही लगाने की जरूरत है, लेकिन अभी मन को तो लगाया नहीं है, तुरंत अभी लगाने की कोशिश करें, तुरंत नहीं लगता, तो बार बार उसका अभ्यास करने की जरूरत है। दिन भर में भी बीच बीच में उस पर ध्यान देने की जरूरत है, अटेंशन देने की जरूरत है। जब भी व्यर्थ चिंतन चला तो उसको थोड़ा सा डिविएट करना है, उसको वहां फुल स्टॉप लगा करके फिर हमें सकारात्मक सोच के तरफ अपनी मन की दिशा को परिवर्तन करने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि ये बात हमारे अंदर निश्चय हो इस बात पर कि हम रचयिता हैं, हम क्रिएटर्स हैं, कि हम अपने विचारों को भी हम क्रिएट करते हैं, रचयिता हम हैं, जो हम रचना चाहे वैसे हम रच सकते हैं, हम मालिक हैं। ऐसा नहीं है कि विचार आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं, कहीं से भी नहीं आते हैं, विचार हम उत्पन्न करते हैं, क्रिएट हम करते हैं। जब इसमें निश्चय होगा तो फिर हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरी बात है स्वमान अभ्यास करें, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, ना केवल स्थूल कर्मेंद्रियों पर मेरा अधिकार है लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर भी मेरा अधिकार है, मन बुद्धि संस्कारों पर भी मेरा अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी मन का अभ्यास जितना आप करते जाएंगे धीरे 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 व्यर्थ चिंतन से आप मुक्त होते जाएंगे।
जी अगला प्रश्न है दीदी, बाबा ने कहा है अपना जमा खाता बढ़ाओ, फिर पता कैसे चले कि हमारा जमा का खाता बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कभी कभी हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा कर्म पुण्य है या पाप है। तो इसमें दो तीन प्रश्न हो गए, एक तो हम जमा खाता कैसे बढ़ाए, और कभी हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा जमा का खाता बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारा कर्म पाप कर्म हो रहा है या पुण्य कर्म हो रहा है, तो इसको स्पष्ट कीजिए।
जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कैसे महसूस होता है? हाँ, बैंक में जमा का खाता बढ़ता जा रहा है, लाख से करोड़, करोड़ से और ज्यादा जमा होता जा रहा है, तो क्या होगा, कैसे फीलिंग होगी? खुशी होगी, निश्चिंतता होगी कि हाँ भविष्य के लिए मैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही जब हमारे जमा आत्मा का जो जमा का खाता जब बढ़ता जाएगा, हल्कापन, लाइटनेस महसूस होगा, कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी क्योंकि जमा का खाता भरा हुआ है। और तीसरी बात है, जो होगा अच्छा होगा, निश्चिंतता ना केवल वर्तमान के लिए लेकिन भविष्य के लिए भी निश्चिंत हम रह सकते हैं। और दूसरी बात है, जमा का खाता जब बढ़ता जाएगा तब हमारे जो सोचने की विधि है वो भी एक गंभीरता आएगी, एक आध्यात्मिकता हर बात में, वो मैच्योरिटी उसमें रहेगा, क्योंकि हर सीन को, ड्रामा के हर सीन को हम ज्ञान युक्त देखना शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक हम ज्ञान को अप्लाई नहीं करते हैं जीवन में, तब तक हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे जमा का खाता बढ़ता जाएगा, ज्ञान को हम यूज करना शुरू करते हैं और इन रिटर्न और भी जमा का खाता बढ़ता जाएगा। और ये पाप है, पुण्य है, या फिर जमा का खाता कैसे बढ़ रहा है, यही प्रश्न था ना? दूसरा प्रश्न क्या था?
ये था कि पहले तो पता नहीं चलता कि पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है, कई बार हमको ऐसे पता नहीं चलता।
हाँ।
और जमा खाता कैसे हम बढ़ाए, ये भी प्रश्न है, और जमा खाता बढ़ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, तीन प्रश्न।
जमा का खाता बढ़ाने की विधि है, जितना हम निस्वार्थ रूप से सेवा करते जाएंगे, आत्मिक स्मृति से हम कर्म करते जाएंगे, वो फिर जमा का खाता बढ़ता जाएगा। जितना विकर्म कम होता जाएगा उतना जमा का खाता बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे जो स्थूल, जो मोटे रूप से जो विकर्म है वो पहले कम होगा, और धीरे धीरे जो सूक्ष्म रूप के जो विकर्म है या पाप है वो कम होता जाएगा जब जमा का खाता बढ़ेगा।
तो ये हमारे जो कर्म है, तो इसमें लिखा कि वो कर्म पुण्य है या पाप है, हम किसको इसको कैसे डिफाइन करें?
सिंपल है, अगर पुण्य कर्म है खुशी बढ़ेगी, पाप कर्म है भारीपन बढ़ेगा, बस उससे ही पता चलेगा कि यह पुण्य कर्म है पाप कर्म है। पुण्य कर्म वो कर्म है जो श्रीमत के अनुसार जो कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म माना जाता है, सत्कर्म माना जाता है और श्रीमत के विरुद्ध का जो कर्म है वो पाप कर्म में गिना जाएगा।
जी अगला प्रश्न है जी, अमृत वेला और नुमा शाम योग में जब हम बैठते हैं तो मोस्टली रूढ़ी हानि करते हैं, कभी सुख संवतन
मोस्टली
रूढ़ी हानि करते हैं,
रूढ़ी हानि करते
कभी सुख संवतन या अव्यक्त स्थिति का अब तक अनुभव नहीं हुआ है, तो हम योगाभ्यास एक साल से नियमित रूप से कर रहे हैं, ज्ञान में 4 साल से है, तो योग की प्रैक्टिस को हम कैसे बढ़ाए और अव्यक्त मुलाकात का अनुभव कैसे करें?
रूहान आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ने की जरूरत है ना? तो सूक्ष्म वतन या फिर मूल वतन का अनुभव तभी होगा जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे या फिर शरीर भान से आप ऊपर उठेंगे। जितना आप आत्मिक स्थिति का, आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते जाएंगे तो देह भान से आप ऊपर उठ सकते हैं, फिर आप सूक्ष्म वतन और मूल वतन का अनुभव आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप योग करते हैं अपनी बुद्धि को जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ले जाएं ऊपर, केवल यहाँ ही अपनी बुद्धि यहाँ ही आत्म या ब्रुकुटि के बीच में ही फोकस से एकाग्र कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि जितना ऊपर जाए परम धाम तक तो फिर शरीर के भान से हम ऊपर उठ सकते हैं, है ना? क्योंकि अपना तो स्वदेश परम धाम है, तो इसीलिए वहां हमें याद करने की जरूरत है बाबा को। तो जितना ऊपर बुद्धि को ले जाएंगे, बुद्धि विशाल भी होगा, बेहद भी होगा, और फिर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना या फिर परम धाम का अनुभव करना बहुत इजी हो जाएगा।
तो अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात का अनुभव कैसे करें?
अव्यक्त स्थिति यही कि जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं और परम धाम को याद करते हैं, परम धाम में बाबा को याद करते हैं, तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव हमारा होगा। और अव्यक्त बाबा का फिर आप उस रीति से विचारों को क्रिएट करना पड़ेगा कि बाबा आपसे क्या बातें कर रहे हैं, अपनी भावनाएं क्या है, अपने विचार क्या है। रूहान से भी वो होगा, लेकिन फिर रूहान का नेक्स्ट लेवल है वो एकाग्रता, है ना? वो एकाग्रता से बाबा का अनुभव, अव्यक्त बाबा का अनुभव हो सकता है।
तो अव्यक्त स्थिति के लिए सुख संवर्तन, परमधाम और आत्मिक स्थिति, तीनों का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रश्न है, बाबा जो हमेशा बोलते हैं कि लास्ट सो फास्ट एंड फास्ट सो फर्स्ट, इसको हम कैसे समझेंगे और खुद वह एग्जाम्पल कैसे बनेंगे?
बाबा तो हर आत्मा में उम्मीद रखते हैं, है ना? बहुत बड़ी उम्मीद बाबा का होता है। जो लास्ट में आए हैं तो फास्ट जाएं, फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर में जाएं, तो ये बाबा की उम्मीद है, बाबा का प्यार है। हर आत्मा वो कर पाए वो पता नहीं कितना कर पाएंगे, लेकिन आप मान लीजिए कि अगर 80 सालों से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं और उनसे भी अगर मुझे आगे जाना है, पुरुषार्थ का स्पीड कितना फास्ट होना चाहिए, है ना? तो पुरुषार्थ का, क्योंकि आप मान लीजिए कि 2 घंटे पहले अगर कोई दौड़ना शुरू किया है, 2 घंटे के बाद मैं दौड़ना शुरू करूं, तो उस व्यक्ति से भी मुझे आगे जाना हो और भी आगे जाना हो तो मेरे स्पीड कितना होना चाहिए, है ना? तो पुरुषार्थ का स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए और पूरी तरह फोकस केवल पुरुषार्थ पर रहेगा, तो फिर वही आत्मा लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकती है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी होगा, कुछ आत्माएं कुछ ऐसे पुरुषार्थ किए भी होंगे, इसीलिए बाबा ऐसे कहते हैं कि लास्ट सो फर्स्ट फास्ट और लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, वो स्लोगन बाबा देते हैं। कुछ आत्माओं ने करके दिखाया होगा, तो इसीलिए क्यों नहीं, आप अगर उमंग उत्साह रखते हैं, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करेंगे पूरी तरह लगन से निरंतर लगातार हर रोज, तो जरूर आप फर्स्ट आ सकते हैं।
अगला प्रश्न है, मेरा योग नहीं लगता है, मन कभी कभी विचलित रहता है, इधर उधर भागने लगता है, तो मैं क्या करूं?
मन भागता है इधर उधर, उसको ही लगाम लगाना है ना। जो पहला आंसर, पहले प्रश्न का उत्तर दिया है वही है
जी।
लगाम लगाना है, स्वराज्य अधिकारी का स्वमान अभ्यास करना है और बार बार अटेंशन देना है खुद को, खुद की विचारों को कि कहाँ जा रहा है, बार बार उसको ट्रैक पर लाना है।
अगला प्रश्न भी इससे संबंधित है, योग में एकाग्रता नहीं है, उसमें हलचल रहती है।
योग में
एकाग्रता नहीं है, उसमें हलचल रहती है, बैठने में काफी परेशानी होती है, तो कृपया इसका समाधान बताइए।
फिर से आत्मा को, विचारों को कंट्रोल करने की बात है। योग में एकाग्रता क्यों नहीं रहती? एक तो रुचि नहीं है, दूसरा है कैसे करना है वो हमें पता नहीं है। अगर आपको 3 घंटा मूवी दिखा दे तो उसमें एकाग्र हो जाएगा, तो उसमें एकाग्रता क्यों आएगी? क्योंकि रुचि है ना। जहां रुचि है, जहां इंटरेस्ट है, वहां ऑटोमेटिकली मन एकाग्र हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए योग करने में भी रुचि रखनी होगी। जब इंटरेस्ट आएगा, प्राप्ति क्या होगी, प्राप्ति समझ में आएगा, कौन सी प्राप्ति हो रही है, तो फिर इंटरेस्ट आएगा ना। अगर बिजनेस में, बाबा ने मुरलियों में ये एग्जाम्पल दिए हैं, बिजनेसमैन रात भर जाग करके भी वो बिजनेस करेगा, क्यों? उसको पता है कमाई का सीजन है, कमाई के सीजन में वो नींद का त्याग भी करने के लिए वो तैयार हो जाएगा, वो फिर वो दुखी नहीं होगा, वो मेरा नींद त्याग करना पड़ रहा है, क्या है ये, नहीं, क्योंकि उसको पता है कमाई हो रहा है ना। तो ऐसे ही जब कमाई क्या हो रहा है, जब ये बात मुझे समझ में आता है, तो फिर उसमें इंटरेस्ट आएगा, एक बात। दूसरी बात ये है प्यार, बाबा के प्रति मेरा प्यार कितना है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं लगेगा, है ना। बाबा के प्यार में डूब जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मोहब्बत का अनुभव हम करते जा रहे हैं। इसीलिए एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मोहब्बत को बढ़ाने की जरूरत है, बाबा के प्रति प्यार, और प्यार बढ़ाने के लिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति। जितना हम सर्व संबंधों की अनुभूति करते जाएंगे बाबा के साथ, तो प्यार बढ़ता जाएगा और फिर एकाग्र होना बहुत मुश्किल बात नहीं होगी, है ना। इन दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, एक तो प्राप्ति और दूसरी बात मोहब्बत, और एक साथ वो एकाग्रता नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगा। एक पहला दिन शायद 3 मिनट बढ़ेगा, दूसरे दिन 5 मिनट, तीसरा दिन फिर 10 मिनट, ऐसे धीरे धीरे उस एकाग्रता को आप बढ़ा सकते हैं।
तो प्राप्ति, प्यार, रुचि और यथार्थ विधि सर्व संबंधों की अनुभूति, तो इनसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न है, सुदर्शन चक्रधारी बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है?
सुदर्शन चक्र को फिराइए तो सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। एक अव्यक्त मुरली में कुछ साल पहले की बात है, बाबा ने कहा था 5 स्वरूपों का अभ्यास दिन में 8 बार करना है ना। जो जितने बार हम वो 5 स्वरूपों का अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, चाहे वो 8 बार या 10 बार, 21 बार भी आप कर सकते हैं दिन में। 5 स्वरूपों का अभ्यास जितना आप करते जाएंगे तो स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा, फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनते जाएंगे। लेकिन स्वदर्शन चक्र को फिराने से लाभ क्या होगा? सुदर्शन चक्र को फिराने से लाभ क्या होगा? क्या होगा? विकर्म विनाश होगा और शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं गला काटने के लिए ना, विकर्मों का गला काटने के लिए। और दूसरी बात, स्वदर्शन चक्र फिराने से क्या होगा? एक कोई उठ करके थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो सुनाई देगा, नहीं तो सभी चूंचू चूंचू करेंगे तो नहीं सुनाई देता। चक्रवर्ती राजा बनेंगे, क्या बात है। उसी स्वरूप में वही अभ्यास हो जाएगा, स्वमान रहेगा। और बहुत गहरी बात, स्वदर्शन चक्र फिराने से क्या होगा? विकर्मों का विनाश होगा, वो तो होगी पॉइंट। दूसरी पॉइंट बताइए। बने क्या है, बनना क्या है, वो स्मृति रहेगा। बहुत गहरी बात ये है कि जब स्वदर्शन माया का पर कट जाएगा वो सब ठीक है, माया का कोई स्वरूप नहीं है जो पर कट जाए, है ना। माया, रावण, सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो कैसे कटेगा माया का पर, कैसे कटेगा रावण का गला, कैसे कटेगा? जब स्वदर्शन चक्र फिराते हैं ना, हमारी बुद्धि बहुत बेहद हो जाएगा। नहीं तो फिर केवल इस जन्म में वो बुद्धि अटकी रहती है, इसी नाम रूप में वो बुद्धि अटकी रहेगी। नहीं तो जब स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो जब बार बार मैं आत्मा याद करती हूँ कि मैं आत्मा परम धाम में थी, फिर बाद में सतयुग में आई, देवी देवता के रूप में वहां रही, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, एक एक बात को मैं याद करती हूँ, वो आत्मा में वो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। लेकिन फिर उसको याद करने से क्या है, स्मृति लाने से फिर उसको जागृत कर रही हूँ, फिर से उसको ऊपर लेके आ रही हूँ। तो इसके कारण से जब भी हम जो कोई कर्म करते हैं, त्रिकालदर्शी बनकर के कर्म करते हैं, कोई भी डिसीशन लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे, त्रिकालदर्शी बनकर के निर्णय लेंगे, केवल वर्तमान को देख करके कोई कर्म नहीं करेंगे। तो हमारी बुद्धि में पूरा चक्र है अभी। हर आत्मा भी 84 जन्म लिए हुए ना, अभी इतने सारे जन्म लिए हैं, तो बार बार, इतने बार, हर रोज में उस चक्र को फिरा रही हूँ। बार बार कहाँ से पूरा चक्र का, सतयुग से लेकर के कलयुग, कलयुग फिर परम धाम, बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, तो इमर्ज कर रही हूँ। जो भी बातें मर्ज रूप में था उसको मैं एमर्ज कर रही हूं। एमर्ज जब कर रही हूं तो बुद्धि विशाल होता जाएगा और केवल वर्तमान में मेरी बुद्धि अटकी नहीं रहेगी। ठीक है, ये बहुत गहरी बात है।
तो इससे देह संबंध स्थान से भी हम डिटैच हो जाएंगे।
डिटैच होना बहुत इजी हो जाएगा उस समय। फिर
अगला प्रश्न है, हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति सभी करना चाहते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है तो उसके लक्षण हमें क्या दिखाई देंगे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें?
पहले भी वही प्रश्न था ना, जमा का खाता।
जमा खाता था
और लगभग एक जैसा है। आध्यात्मिक उन्नति जैसे होता जाएगा वैसे हल्कापन, खुशी, फिर यथार्थ रूप से हम कर्म करते जाएंगे, श्रीमत अनुसार हम कर्म करते जाएंगे तो लगेगा फिर आध्यात्मिक उन्नति हो रही है।
उसके और कुछ लक्षण सूक्ष्म में कुछ जो हमको स्थिति में अनुभव हो?
हाँ, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा होता जाएगा और विचारों में परिवर्तन आता जाएगा, हमारे वृत्तियों में परिवर्तन आता जाएगा, हमारी भावनाओं में परिवर्तन आता जाएगा।
एक प्रश्न है, मेरे अंदर धैर्य की बहुत कमी है।
धैर्यता
की, चाहे मेरे कोई भी कार्य हो, चाहे कोई मेरे को क्विक रेस्पॉन्स चाहिए किसी भी चीज का, यदि क्विक रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो मैं अधैर्य हो जाता हूं। तो अधीर होने से काफी सारी समस्याएं भी आती है, तो हम कैसे इस परिस्थिति से बचे, कैसे अपनी धैर्यता की शक्ति को बढ़ाए?
वैसे तो पूरे संसार में ही ये प्रॉब्लम है ना, धैर्यता की कमी। सबको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, सफलता भी बहुत जल्दी चाहिए, धन भी बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। लेकिन वैसे तो एक कहावत है, सक्सेस डज नॉट हैव अ शॉर्टकट, है ना। सफल होना है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, मेहनत करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं रखना। लेकिन फल की इच्छा पहले रख लेते हैं, फिर बाद में हम कर्म करते हैं, है ना। तो वो उल्टा अगर हो जाएगा तो फिर धैर्यता नहीं रहेगी, पेशेंस नहीं रहेगा। इसीलिए धैर्यता से कर्म करते जाए, करते जाए, करते जाए, तो फल तो ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। लेकिन अभी अभी चाहिए मुझे, अभी मैंने वो कर्म किया, अभी सफलता चाहिए, अभी उसका रिटर्न चाहिए, उसकी इच्छा नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या अभ्यास करें? क्या अभ्यास करें? शांति का अभ्यास करें, स्वमान, क्योंकि शांति की कमी है ना, आत्मा में शांति की कमी के कारण से धैर्यता की कमी है। इसीलिए जब भी कोई ऐसे अवगुण नजर आता है अपने अंदर, ऐसे कोई कमी कमजोरी नजर आता है, उसके कनेक्टेड जो गुण है उसका अभ्यास हम ज्यादा करें। क्योंकि अगर हम ये सोचे धैर्यता को लाना है, धैर्यता को लाना है, तो वो तो आएगा, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है? शांति की कमी है ना। तो शांति का अभ्यास जितना हम करते जाएंगे वो धीरे धीरे धैर्यता भी आएगा। जैसे इस कमरे में अगर अंधेरा है, अंधेरे को भगाना है तो क्या करना होगा? प्रकाश लाना होगा, किसी ना किसी रूप से लाइट, ट्यूबलाइट जलाए या दिया जलाए, कैंडल जलाए, टॉर्च जलाए, कोई ना कोई प्रकार के प्रकाश जब लाएंगे तो अंधेरा भाग जाएगा। अगर ये सोचे ये अंधेरा भाग जाओ, नहीं होगा, है ना। तो अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अस्तित्व है। अंधेरा क्या है? अंधेरा प्रकाश का ना होना अंधेरा है ना। डार्कनेस क्या है, अंधेरा क्या है? प्रकाश का ना होना अंधेरा है. प्रकाश क्या है, रोशनी क्या है? अंधेरे का ना होना, अंधेरे का ना होना प्रकाश है. क्या कहेंगे? वो आध्यात्मिक, लेकिन स्थूल रूप से मैं पूछ रही हूं. वो तो बाबा का ज्ञान है, स्थूल रूप से प्रकाश क्या है? एनर्जी है ना? तो प्रकाश का स्रोत है, अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है. जब सूर्योदय होता है ऑटोमेटिकली अंधेरा खत्म हो जाएगा, जब सूर्य अस्त होगा अंधेरा फिर से होगा, है ना? ऐसे ही जब हमारे अंदर गुण है अवगुण नहीं होगा. गुण प्रकाश के समान है, अवगुण अंधेरे के समान है. अवगुणों का कोई अस्तित्व नहीं है. शांति की कमी के कारण से क्रोध आएगा, इंपेशियंस, अधैर्यता, ये सब आएगा. तो शांति जब होगा मन के अंदर, तो फिर अशांति या फिर क्रोध या फिर ये सब कुछ नहीं होगा, है ना? धैर्यता लानी है. जब भी आप योग में बैठते हैं तो शांति की अनुभूति करें, है ना?
तो कई बार क्या होता है, कुछ भाई बहनों के साथ इस तरह से होता है, या तो जल्दबाजी में अधीरता को अपना लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल सुस्त बन जाते हैं, कोई बात नहीं हो जाएगा. तो इससे कैसे बचे?
जो कर्म करना है उसमें लेजीनेस नहीं लाना है, उसमें आलस्य अलबेलापन नहीं लाना है. हाँ, जब रिजल्ट आना होगा वो आएगा. उसके लिए हम ये नहीं कहे कि अभी चाहिए अभी चाहिए, लेकिन कर्म करते समय कोई कसर नहीं छोड़ना है. पुरुषार्थ करने के लिए ओटे सो अर्जुन, हम करते जाए वो रिजल्ट समय पर आएगा जरूर, है ना? उसके लिए धैर्य.
तो हमें एक्टिव भी रहना है और शांत चित भी रहना है. अगला प्रश्न है, मेरी बहन की बेटी ज्ञान में है, लौकिक घर वाले बहुत विघ्न डालते हैं, जब बाबा की याद में बैठती है तो उसके सिर में कुछ हो जाता है और डिप्रेस हो जाती है, तो इससे कैसे मुक्त हो?
दो प्रश्न है इसमें.
जी, तो योग में बैठते हैं तो सिर में कुछ होता है और वो डिप्रेस हो जाती है,
विघ्न डालते हैं, वो भी है ना, विघ्न डालते हैं. तो हम विघ्न विनाशक का स्वमान हम अभ्यास करें, बाबा से शक्ति लेकर के जो भी अपने जीवन के विघ्न हैं वो हम नष्ट कर रहे हैं. वो जितना हम अभ्यास करते जाएंगे विघ्न विनाश होता जाएगा. और दूसरी बात, जब हम योग में बैठते हैं, किसी किसी को सिर में दर्द होता है, किसी किसी को कुछ होता है, उसमें फिर यह अभ्यास करें कि मैं इस शरीर का मालिक हूं, बाबा से शक्ति लेकर के शरीर के एक एक कण को मैं बाबा की शक्ति प्रदान कर रही हूं. जितना हम इस शरीर जो रथ है मेरा, उसको मैं शक्ति देती जाऊं, हील करती जाऊं, बाबा की शक्ति से वो फिर ठीक होगा. और दूसरी बात ये है, अगर बहुत ज्यादा है सिर दर्द या कुछ ऐसे प्रॉब्लम होगा तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं.
तीन चार प्रश्न है, ये तो पहले भी आ चुका है, योग में मन भटकता है, व्यर्थ में मन जाता है, तो इस पर क्या आते, तो ये तो प्रश्न पहले भी आ चुका है. दूसरा प्रश्न है, हर घड़ी केवल परीक्षा है जीवन में, कभी प्रकृति का, कभी परिवार का, कभी लौकिक का, कभी अलौकिक का, कभी पास पड़ोस वालों का, ऐसे कोई ना कोई पेपर्स आते रहते हैं, तो उससे थक जाते हैं, तो उन पेपर्स से मुक्त कैसे बने, अपने उमंग उत्साह कैसे बनाए रखें?
अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, क्योंकि अगर हम पेपर समझेंगे तो भारीपन आएगा। खेल समझ करके हम उसके साथ खेलते चले और फिर तब हमारा अंदर वो लाइटनेस हल्कापन रहेगा। क्योंकि जब खेल खेल में चोट भी लगेगा, गिरेंगे भी और कुछ कभी कभी हार भी हो जाएगा, हमें दुख नहीं होगा क्योंकि ये खेल है ना। तो वो परीक्षा के रूप में ना देखें, एग्जाम के रूप में ना देख करके खेल के रूप में देखते चले और फिर उसके साथ जैसे ड्रामा का सीन सामने आता जाएगा वैसे हम कर्म करते जाए। और दूसरी बात, अगर परीक्षा भी आ रही है, अगर मेरा कर्म का हिसाब किताब के अनुसार ये बातें आ भी रहे हैं, हल्के हो रही हूं ना, चुक तो कर रही हूं ना, हिसाब किताब चुक तो हो रहा है, तो मेरा और मुझे और भी खुशी होनी चाहिए, दुख होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए, हाँ, एक चुक तो हो गया। जैसे अगर बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, धीरे धीरे हर मास थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, लोन क्लियर हो रहा है, खुश होंगे ना? तो अगर ऐसे चुक तो हो रहा है, हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हिसाब किताब इस संसार में किसका है? सबसे ज्यादा हिसाब किताब किसका है? ब्राह्मण आत्माओं का है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जन्म हमने लिया है और ज्यादा जन्म लेने के कारण से ज्यादा विकर्म भी हमने किया, अच्छा कर्म भी किया है, पुण्य कर्म भी किया है, बहुत अच्छे कर्म किए भी किए हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत विकर्म भी हो गया है। लेकिन हर जन्म में थोड़ा बहुत करते 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 वो 63 जन्मों के जो विकर्म है वो बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो अभी अभी जो आत्माएं आ रही है तो विकर्म भी करेंगे, वो थोड़ा बहुत हमारे विकर्म के सामने उनका विकर्म बहुत थोड़ा है ना। तो इसीलिए, लेकिन सबसे ज्यादा सुख भी हम पाएंगे और उन विकर्मों को विनाश करने की विधि भी हमें पता है ना, और किसी को भी पता नहीं है। बाबा ने स्पष्ट बोला हुआ है विकर्मों को विनाश करने की विधि कौन सी है। विकर्मों को विनाश करने की विधि क्या है? बाबा की याद। एकमात्र उपाय है बाबा के साथ योग। योग से हम अपने पास्ट कर्मों के विकर्म हम विनाश कर सकते हैं और जितना हम बीज रूप स्थिति का अनुभव करते हैं उतना हम अपने विकर्मों को विनाश बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर योग नहीं हो रहा है, योग से हम विकर्म विनाश नहीं कर रहे हैं तो फिर पेपर तो आएगा। दूसरे प्रकार के पेपर कौन सा आएगा? शरीर भोगना, कोई ना कोई बीमारी आएगी, उससे हमारा विकर्म विनाश होगा। तीसरे प्रकार के विकर्म विनाश, संबंधों में टकराव, संबंधों में अनबन, उसमें दुख दर्द, उससे भी हमारा विकर्म विनाश होता। अगर हमें शरीर का और संबंधों का दुख नहीं चाहिए तो योग बढ़ाइए। योग जितना बढ़ाते जाएंगे विकर्म बहुत जल्दी भस्म होता जाएगा।
इन्हीं के और एक दो प्रश्न है कि नौकरी का भी प्रॉब्लम रहता है, काम धंधा भी कभी ठीक चलता है।
थोड़ा सा धीरे बोलेंगे तो समझ में आएगा, बोल जा फास्ट बोल।
नौकरी में भी काम धंधे में भी प्रॉब्लम रहता है, कभी ठीक चलता है कभी नहीं चलता है।
ओके,
तो उससे उस हमारा काम ठीक चले, नौकरी ठीक से चलती रहे, तो उसके लिए क्या करें?
योग बढ़ाइए और उन लोगों को सकाश दे। जब भी आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे, जॉब ऑफिस में जाएंगे, तो बाबा को याद करके उन आत्माओं को इमर्ज करके सकाश दीजिए, प्यार के वाइब्रेशंस दीजिए, फिर आप जाएंगे तो जरूर आपका धीरे धीरे संबंध उन लोगों के साथ ठीक हो जाएगा।
लास्ट प्रश्न है इनका कि ऐसा भी महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी जीवन में इतना दर्द क्यों है?
अदृश्य शक्ति या बाबा की शक्ति? बाबा की शक्ति साथ में है, लेकिन बाबा साथ है लेकिन ये गारंटी नहीं है ना, ये इस जीवन में आपको सुख शांति में वो तो है लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ये बात नहीं है। लेकिन बाबा हमारे साथ है, समस्याएं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि समस्याएं आएंगे ही नहीं, समस्याएं आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, तो वो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्या का समाधान भी हमारे पास है। इसीलिए हर बात को, जिंदगी की हर बात को ज्ञान युक्त होकर के उसके बारे में सोचे, ज्ञान युक्त होकर के उसको देखे, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। समस्या समस्या करके आप सिर भारी होकर के न बैठे, समस्या आएंगी लेकिन आएंगी जाएंगी, है ना। तो ज्ञान युक्त होकर के ज्ञान को हर बात में ज्ञान को अप्लाई करते जाएंगे।
तो समस्या कम सोचे, समाधान का सोचे,
समाधान के बारे में सोचे।
लास्ट प्रश्न है, भटकती हुई आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी और उन आत्माओं के प्रभाव से हम सेफ रहे, इसके लिए हमको क्या अभ्यास करना चाहिए?
मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ, यह अभ्यास करें, क्योंकि बाबा ने हमें हर आत्मा को ये वरदान दिया है, जो भी आत्माएं दुख दर्द में हैं या भटकती हुई आत्माएं हैं, उनको हम मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति दाता के बच्चे हम, मास्टर मुक्ति दाता हैं। इस स्वमान का अभ्यास करते हुए उन आत्माओं को भी हम मुक्ति दे सकते हैं।
और उनके प्रभाव से सेफ रहने के लिए हमें क्या अभ्यास करना है?
उनके प्रभाव से सेफ रहने के लिए बाबा के छत्र छाया के नीचे अपने आप को अनुभव करें। अमृत वेले में खास बाबा के छत्र छाया के नीचे अपने आप को अनुभव करें। पूरे बाबा की शक्ति पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है अपने चारों तरफ, वो अभ्यास कवच बना हुआ है चारों तरफ, वो अभ्यास हमें बार बार करना है।
थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के प्रश्नों का उत्तर दे करके सभी को संतुष्ट किया। और अभी हम सभी बहुत पावरफुल स्थिति में, मास्टर सर्व शक्तिवान की स्थिति में बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।
और कल सवेरे